बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का जो इसमें सिफत है वो रज़ाक है, अल्लाह ताला का नामों में से एक नाम। रज़ाक रिस्क से है, रिस्क देने वाला। अल्लाह ताला की जो हस्ती है वो रब होने के एतबार से, अल्लाह ताला ने अपने जो रब होने के एतबार से जो चीज़ें अल्लाह ताला पे आयद होती हैं, ये जुमला समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि मसलन कोई आदमी बाप होता है तो बाप पर कुछ चीज़ें आयद होती हैं, जिम्मेदारियाँ। बच्चे हैं तो बच्चों पर जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं। इस तरह खुदा है तो खुदा के अपनी खुदाई के लिए, अपने बंदों के लिए, अपनी मखलूकात के लिए अल्लाह ताला ने अपने ऊपर जैसे रहमत वाजिब कर रखी है, इस तरह कुछ जिम्मेदारियाँ अल्लाह ताला ने अपने लिए कबूल फरमाई हुई हैं। उन जिम्मेदारियों में रिस्क फराहम करना भी एक जिम्मेदारी है कि एक मखलूक पैदा कर ली है, उसको रिस्क देना है। अब ये रिस्क देने का मामला चूँकि बाकी तमाम स्कीम के अंदर है तो हर किसी को पूरा पूरा रिस्क नहीं दिया गया, हर किसी को वाफर रिस्क नहीं दिया गया, बल्कि वो बहुत सारी हिकमतों के तहत रख कर दिया गया है। तो उसमें किसी को कम दिया है, किसी को ज़्यादा दिया है, किसी को दिया ही नहीं है, वो दूसरों के ऊपर इन्हिसार कर दिया है। जैसे ग़ुलाम होते थे पुराने ज़माने में कि वो बिल्कुल उनके मलकियत में कोई चीज़ नहीं होती थी, अपने आका के ऊपर ही होते थे। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला ने अपनी पूरी स्कीम के अंदर बरतने के लिए इख्तियार की हैं, लेकिन वो राज़िक है, रिस्क देने वाला है। रिस्क देता है अपनी हिकमतों के तहत, अपने आगे चल कर कुछ आयात में ज़र बहस भी आएगा कि वो क्या क्या पहलू हैं। लेकिन जो सिफत रिस्क है उसका मतलब है कि अल्लाह ताला अपने अपनी मखलूकात को ज़िंदा रहने के लिए, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो देते हैं। रोटी, रहने की जगह और दूसरी जितनी भी नेमतें हैं वो सब इसके अंदर आ जाती हैं। सिर्फ रोटी पानी इसका मानी नहीं है, यानी इसका मतलब ये भी है कि मुझे जो सलाहियतें चाहिए, मुझे जो मौाक़े चाहिए, जो नफासत की वजह से जो जायके चाहिए, जो यानी बेशुमार पहलुओं से जो कुछ मुझे चाहिए वो दे दिया है। अब देखिए कि हमारी आँखें जो कुछ देखती हैं उसमें भी हम लुत्फ़ भी उठाते हैं, वहशत भी होती है, खौफ भी होता है, सिर्फ आँखों के लिए इतना कुछ पैदा कर दिया गया है। इसी तरह कानों में हम चीखें भी सुनते हैं, जलजलों की गड़गड़ाहट भी सुनते हैं, और मौसीकी और इस तरह की चीज़ें भी सुनते हैं, और चश्मों का झरने फूटते हुए सुनते हैं आवाज़ें, और नदी के किनारे पर चहचहाते परिंदों की आवाज़ें भी सुनते हैं। तो कानों के लिए देखिए क्या कुछ, ये सब रिस्क है जो अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया। इसी तरह हम बोल सकते हैं, हम तकरीरें करते हैं, हम गाते हैं, गुनगुनाते हैं, शायरी करते हैं, ये सब कुछ बोलने के अंदर अल्लाह ताला ने कितना कुछ दे दिया है। तो गोया राज़िक के मानी ये हैं कि ज़िंदगी के अगर हज़ार शोबे हैं, हज़ार ज़रूरतें हैं, तो सब के पहलू से कुछ ना कुछ हमें दिया गया है। तो ये रज़ाक है। रज़ाक में मुबालगे का सीगा है, बहुत रिस्क देने वाला और लाजमी रिस्क देने वाला, ये इसके अंदर मफहूम भी है। अब दुनिया के अंदर जो निज़ाम है, ये चूँकि दुनिया आजमाइश के लिए, ख़ास तौर से इंसानों के लिए, तो इसमें रज़ाक की जो रज़ाकियत है वो कहीं कहीं आपको लगेगा कि नज़र नहीं आ रही। मसलन इसको ज़हीन आदमी है, समझदार है, नेक है, लेकिन फाके से मर रहा। कहीं आपको लगेगा कि यार ये तो बड़े मेहनती आदमी है, लेकिन सारा दिन मेहनत करके बस दो टाइम की रोटी भी पूरी नहीं कर पाता। ये सब कुछ नज़र आएगा। ये क्यों आएगा? ये इसलिए नज़र आएगा कि अल्लाह ने ये दुनिया इम्तिहान के लिए बनाई है। तो अब देखिए, फरमाया कि ये सूरह ज़ारियात की 58 नंबर आयत है। इसमें फरमाया कि इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक ज़ुल्कुव्वतिल मतीन, ये ज़ुल्कुव्वतिल मतीन के साथ मिलकर रज़्ज़ाक की सिफ़त आई है। तो मतलब यह है कि दुनिया का निज़ाम जो रिस्क वाला निज़ाम है, ये अल्लाह ताला ने रिस्क की बांट के ऊपर बनाया है। कसम ना बैना कुमल मईशा, जैसे कुरान ने दूसरे का फरमाया है कि मैंने तुम्हें तकसीम किया है रिस्क, ज़िंदगी के मौाक़े और सारी चीज़ें जो ज़िंदगी में आती हैं, ताकि तुम एक दूसरे के काम आ सको। इसलिए नहीं बनाया कि तुम्हें मैंने पालने के लिए बस देना था। अगर सिर्फ पालने के लिए देना होता तो सबको बहुत कुछ दिया जाता, लेकिन तुके दुनिया का निज़ाम एक दूसरे से मदद लेने, एक दूसरे के काम आने और आजमाइश का ज़ाबता है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने तुम्हें तकसीम किया है रिस्क को। ये तकसीम कोई फ़ैसला तब्दील नहीं कर सकता। किसी शख्स के अंदर ये ज़रूरत नहीं है कि खुदा के इस फैसले को तब्दील करे कि जो उसने ये निज़ाम बनाया है कि बाज़ मुल्कों को अमीर बना दिया, बाज़ को गरीब बना दिया है, बाज़ अफराद को गरीब मुल्कों में रहते हुए बहुत अमीर बना दिया है और बाज़ को गरीब बनाया है, बल्कि अक्सर को गरीब बनाया है। तो ये सारा कुछ अल्लाह ताला का फ़ैसला, इसको कोई तब्दील नहीं कर सकता। वो ज़ुल कुव्वतिल मतीन है, यानी वो मज़बूत है, उसके जो भी वो काम करता है वो गलत नहीं होते, कमज़ोर नहीं होते, टूटने फूटने वाले नहीं होते, किसी गलत फ़ैसले पर मबनी नहीं होते कि ओहो वो कहे अच्छा यार गलत हो गया आप ठीक कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। जो कुछ उसने सोचा है, जो कुछ उसने प्लान किया है, वो बिल्कुल पुख्ता तरीके से किया हुआ है। उसकी रस्सियाँ जो उसने बल देकर बनाई हैं, वो सारी की सारी मजबूत हैं। इसके जितने भी धागे हैं कायनात के अंदर, मईशत के निज़ाम को चलाने के लिए, ज़िंदगी के निज़ाम को चलाने के लिए, या आजमाइश के निज़ाम को चलाने के लिए, या हुकूमतें और अवाम इसके निज़ाम को चलाने के लिए, पता नहीं कितने पहलू हैं जिनके सामने रख कर अल्लाह ताला ने इस कायनात की रस्सी बुनी है। तो वो इतनी मजबूत है कि उसमें तुम गलती नहीं बता सकते कि भाई जब क़यामत वाले दिन हम वहाँ क़यामत वाले दिन होंगे, तो जब हमारे अमालनामा हमारे सामने आएगा और उसमें अल्लाह ताला की हिसाब सामने आएगा कि इस वजह से मैंने ये अजर दिया, इस वजह से ये अजर नहीं दिया, तो उस वक्त हम बैठ कर कहेंगे कि ओहो इतना शानदार, काश मुझे दुनिया में समझ में आ जाती तो मैं अपनी गुरबत ही में, मुझे गुरबत यहाँ तक ले आई है, गुरबत ने मुझे ये अजर दे दिया है। तो ये वहाँ पर जाकर सही मानी में अंदाज़ा होगा। तो यहाँ जो भी रज़ाक है उसने पूरे नक्शे के मुताबिक कि कौन सी चीज़ कहाँ कितनी होनी चाहिए, जैसे हम एक इंजीनियर मशीन बनाता है, कौन सा पेज कैसा होना चाहिए, किस जगह लगा होना चाहिए, कौन सी जगह पे इसको होना चाहिए, ठीक ऐसा ही इस कायनात का निज़ाम है। मशीन में तो सिर्फ एक चीज़ है पेश नज़र होती है जो उसने टास्क अदा करना है, ये कायनात की मशीन बेपनाह काम कर रही है। इसके अंदर खून दौड़ने के मसले को भी देखिए कि एक जिस्म के अंदर जो खून दौड़ रहा होता है उसके लिए कितने मामलात करने पड़ते हैं। तो ये सारा कुछ सामने रखते हुए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो ज़ुल कुव्वतिल मतीन है, उसने जो भी निज़ाम बनाया है बड़ा पुख्ता बनाया है, क्योंकि वो खुद पुख्ता है, उसके अंदर कोई कमज़ोरी नहीं है। उस पुख्ता निज़ाम की वजह से उसने एक रिज़्क का निज़ाम बनाया है, उस निज़ाम के तहत वो रिज़्क दे रहा है, कोई उसके फ़ैसलों को रोक नहीं सकता, कोई उसके फ़ैसलों में गलती साबित नहीं कर सकता। जिसको कम दिया है वो भी दुरुस्त है, जिसको ज़्यादा दिया है वो भी दुरुस्त है। रज़ाक के दूसरा पहलू जो है वो ये कि खुदा रोज़ी रसा है, क्योंकि इसमें मुबालगा है, वो ख़ुद उसको रोज़ी की ज़रूरत नहीं है। कुरान मजीद ने शिर्क के ऊपर ये बात करते हुए एक दो जगह पे कहा है कि तुम जिनको पूछते हो वो तो खाते हैं और जबकि मैं देने वाला हूँ। तो रज़ाक के ये मानी भी है कि अल्लाह ताला देने वाले हैं, वो मोहताज नहीं है, उनको हमें रोटी पका कर नहीं नज़र न्याज में पेश करनी है। हमारे दीन में नज़र न्याज भी क्या है कि हम खाना पकाते हैं खुदा को राज़ी करने के लिए, देते लोगों को हैं, जबकि जितने मुशरिकाना मज़ाहिब हैं वो अपने बुतों के आगे जा के रखते हैं, अपने देवताओं के आगे जा के रखते हैं कि आप खाइए। वो खाते तो नहीं हैं, खाते तो वही हैं जो पंडित पुरोहित वहाँ होते हैं, लेकिन जो खुदा है हमारा उस बिल्कुल वाज़ है हमारे दीन में कि हम उसको जाकर खाना नहीं देते। कुरान ने बयान भी किया है कि तुम्हारी गोश्त मुझ तक नहीं पहुँचता, तुम्हारा तकवा मुझ तक पहुँचता है। तो जिस तकवे से हम लोगों को खाना खिला रहे होते हैं बस अल्लाह तक वो पहुँचता है, ताकि वो हमारे अमाल नामे में लिख ले। अल्लाह ताला को इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम जो चीज़ें खुदा की राह में खर्च करते हैं वो खुदा को पेश करें। ये मुशरिकाना मज़ाहिब में होता है कि जो अल्लाह के अलावा हस्तियों को खुदा मानते हैं उनको वो खिलाने पिलाने की कोशिश करते हैं, अपनी नज़र न्याज उसके आगे रखते हैं। इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में दरअसल ये है कि हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए उसके बंदों ही को खिलाते हैं। हमारी नज़र न्याज जो खुदा के हजूर पेश करनी होती है, कुर्बानी जो खुदा के हजूर पेश करते हैं, वो अल्लाह को खिलाने के लिए नहीं होती है, बल्कि अल्लाह के हजूर पेश करते हैं इस मकसद से कि हम बंदों को खिलाएं, बंदों को पेश करें। तो अल्लाह ताला हमारे रिज़्क के मोहताज नहीं है। रज़्ज़ाक का जो दूसरा मानी मैं वाज़े करना चाहता था वो ये है कि अल्लाह ताला हमारे रिज़्क के मोहताज नहीं है, हमारी रोज़ी के मोहताज नहीं है, हमारी खिदमात के मोहताज नहीं है। वो खुद रज़्ज़ाक है, वो खुद देने वाले हैं, ना कि लेने वाले। तो ये वाज़े रहना चाहिए कि रज़्ज़ाक के दो पहलू हैं, एक हमें देने के एतबार से और एक इस एतबार से कि खुदा देने वाला है, लेने वाला नहीं है। तो ये सूरह ज़ारियात की आयत थी जिसमें से हमने ये मानी अखज़ किए हैं। उसके बाद सूरह हूद की छठी आयत है, इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि मामिन दाबतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। इस ज़मीन पर कोई जानदार ऐसा नहीं है कि जिसका रिज्क अल्लाह के ऊपर ना हो। खुदा की जो रबूबियत है उसकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, पालना, पोसना, निगहबानी करना, अदल इंसाफ कायम करना, ये सारा कुछ खुदा ने अपने ज़िम्मे ले रखा है और इसको पूरी वफादारी के साथ अल्लाह ताला पूरा करते हैं। वो अलबर का जो हम मानी पढ़ चुके हैं वो यहाँ पर भी एक असर रखता है कि रिज्क देने के एतबार से अल्लाह ताला ने अपने अलबर होने को, अपनी वफादारी को पूरी तरह से निभाया है। तो खुदा की रबूबियत है कि उसने हर चीज़ का रिज्क जो है वो देना है, क्योंकि अल्लाह ताला जानते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ ठहरेगी, कहाँ दफनाई जाएगी, ये सब कुछ किताब मुबीन में लिखा हुआ है। तो रिज्क कितना दिया जाना है, कैसे दिया जाना है, ज़राए क्या होंगे, कोई मोची बन जाएगा, कोई चूल्हा बन जाएगा, कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई मज़दूर और कोई मिस्त्री और कोई साइंसदान, ये सारा कुछ किताब मुबीन में लिखा हुआ है। और कितना कितना रिज्क आना है, कैसे कैसे आना है, वो भी लिखा हुआ है। लेकिन कमोबेश का मामला जो है मैं वाज़े कर चुका हूँ कि किसी को ज़्यादा किसी को कम, ये खुदा ने जो स्कीम बनाई है दुनिया को चलाने के लिए उसके एतबार से ऐसा किया गया है। एक और पहलू को सूरह बनी इसराइल में 30वीं आयत में वाज़े किया गया है कि अल्लाह ताला रिस्क खोलता है जिसके लिए चाहता है और तंग कर देता है जिसके लिए चाहता है। वो अपने बंदों से बड़ा ही बाखबर है, बड़ा ही बसीर है। इसका क्या मतलब हुआ कि बहुत सारी स्कीमें जो मैंने पहले अर्ज़ की कि कायनात का निज़ाम है, इसके अंदर आजमाइश है, इसके अंदर और बहुत सारे पहलू हैं जिनको देख कर अल्लाह ताला रिस्क की फरावानी या कमी करते हैं। ठीक इन्हीं असूलों में एक असूल और भी है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से ही वाकिफ हैं जिसको रिस्क देना है। क्या वो इस काबिल है कि उसको थोड़ा रिस्क दिया जाए, या क्या वो इस काबिल है कि इसको बहुत ज़्यादा रिस्क दिया जाए, ये फ़ैसला अल्लाह ताला अपने बंदों को देख कर करते हैं। तो बहुत सारी बाकी स्कीमें भी और ख़ुद इंसानों के बारे में जिनका इंडिविजुअल्स का मसला ज़रे बहस होता है उनके साथ भी अल्लाह ताला अपने इल्म, अपनी खबर और अपनी बसीरत की बुनियाद पर फ़ैसला करते हैं कि इसको इतना मिलना चाहिए, इसको इतना मिलना। अगर ये इसको इतना दे दिया गया तो ये आपे से बाहर हो जाएगा, अगर इसको इतना कम दे दिया गया तो ये कमज़ोर बनाया गया इस पहलू से, तो ये मायूसी का शिकार हो जाएगा। इसलिए अब जो कुछ दुनिया में मिल रहा है वो अल्लाह ताला हमें देख कर दे रहे हैं कि हम इस काबिल थे कि इतनी गुरबत सह सकें, बस उतनी गुरबत देते हैं। हम इस काबिल थे कि इतना पैसा सह सकें, उतना ही पैसा दे रहे हैं। अब जो आदमी ख़राब होता है, अब जो आदमी बिगड़ता है, तो इसका मतलब है कि उसके अपने किसी वजह से ऐसा हुआ है, उसके अंदर सलाहियत थी कि वो इतना ज़्यादा पैसा या इतना थोड़ा पैसा लेकर भी ज़िंदगी गुजार सकता था, ईमान पर, नेकी पर कायम रह सकता था। लेकिन अब जो वो भटका है तो इसका मतलब है कि उसके अपने कुछ अपने इरादे हैं, अपना फ़ैसला है। उसके बाद सूरह सबा की 39 नंबर आयत है कि इसमें ये बात वादे की गई है कि अल्लाह ताला ही जिसके लिए चाहता है रिस्क को खोलता है, जिसके लिए चाहता है बंद कर देता है, और जो भी तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो अल्लाह ताला उसका पूरा पूरा बदला देगा, वो खैरुल राज़िकीन है। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि दुनिया में तो अल्लाह ताला दे ही रहे हैं, जिसके लिए चाहते हैं रिस्क खोल देते हैं, जिसके लिए तंग कर देते हैं। अब मैंने अल्लाह की राह में खर्च किया है उसके बंदों के लिए, तो अब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि मैं तुमने मायूस नहीं होना, घबराना नहीं इस बात से कि मेरे पैसे जब निकल जाएंगे अल्लाह की राह में तो कम हो जाएंगे। फरमाया नहीं, मैं तुम्हारा बेहतरीन राज़िक हूँ। तो मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि दुनिया में भी तुम्हें मिल जाए लेकिन आखिरत में तुम्हें मिलना ही मिलना है। तो वल्लाहु खैरुर राज़िकीन जो है वो दुनिया से लेकर आखिरत तक फैला हुआ है। कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि मेरे पास कुछ पैसे थे, मैंने अल्लाह की राह में किसी आदमी को दे दिए, मेरे पास पैसे कम हो गए, इसका इम्कान है कि वल्लाहु खैरुर राज़िकीन कि तुम्हें तंगी नहीं आएगी, मुश्किल नहीं आएगी, तुम ज़िंदगी गुजारते चले जाओगे, कोई मसला नहीं होगा, और वो पैसे वापस आ जाए या ज़्यादा बढ़ के वापस आ जाए। जितने मैंने खर्च किए थे, मैंने 10,000 दिए थे, अगले दिन 20,000 आ गए, या मुझे जब तंगी आएगी तब आ जाएंगे, अभी नहीं आए। ठीक है, यह है खैरुर राज़िकीन का दुनिया में पहलू। और आखिरत में क्या है कि इनका अजर कई सौ गुना होकर मिलेगा। तो इसलिए फरमाया कि तुम जो भी खर्च करोगे मैं उसका तुम्हें बदला दे दूँगा, क्योंकि वो खैरुर राज़िकीन है। तो इसमें खैरुर राज़िकीन में खर्च करने वालों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से तसल्ली है, बशारत है कि तुम्हारा रुपया रुपया ज़ाया नहीं जाएगा। सूरह मुज़म्मल के एंड पे अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम अगर जो भी अल्लाह की राह में खर्च करोगे ताजिदु इंदल्लाहि खैरन व आज़मा अजरा, तुम उसको बढ़कर पाओगे। 10 रुपये दिए हुए थे वो 100 रुपये के नोट की शक्ल में नज़र आ रहे होंगे और अजर के एतबार से भी बढ़कर होगा। तो इस एतबार से जो खैरुर राज़िकीन है वो दोनों दुनियाओं में छाया हुआ है। यहाँ वो हमें तंगी नहीं आने देगा, जितनी आनी चाहिए उतनी आने देगा, जितनी नहीं आनी चाहिए उतनी नहीं आने देगा, लेकिन असल जो रिस्क जाकर मिलना है वो आखिरत में मिलना है। उसके बाद आले इमरान की आयत है 27 जिसको मैंने लिया है, इसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में, और मुर्दा वजूद से ज़िंदगी पैदा कर देता है और ज़िंदा को मार देता है और वो गल चढ़ कर मिट्टी में तब्दील हो जाता है। और आगे फरमाया कि वतरज़ुकु मन तशाउ बग़ैर हिसाब, और जिसको चाहता है बग़ैर हिसाब देता है। ये क्या मतलब हुआ? मतलब यह कि जिस तरह दुनिया का ये निज़ाम चल रहा है, दिन का चढ़ना, सूरज का चढ़ना, जिस तरह किसी ज़िंदा चीज़ का पैदा हो जाना, औलाद का पैदा हो जाना, या जानवरों जंगलों में जानवर पैदा हो रहे हैं, दरख्त और पौधे पैदा हो रहे हैं, फूल और फल निकल रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, बिल्कुल इसी असूल पर रिस्क बांटा गया है दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए। इसका किसी नेकी बदी से कोई ताल्लुक नहीं है कि नेक आदमी को ज़्यादा मिलेगा बुरे को कम मिलेगा, नहीं। ये जिस तरह जंगल में पौधे और फल उगाते हैं, झाड़ियाँ उगाती हैं, वैसे ही अल्लाह ताला ने बग़ैर हिसाब एक तरह से रिस्क बांटा हुआ है कि जिसको चाहते हैं ज़्यादा दे देते हैं, जिसको चाहते हैं कम देते हैं। वो आजमाइश के ज़ाब्ते पर है, वो लेकिन खबीर और बसीर होने की बुनियाद पर है, वो अपनी स्कीमों के एतबार से है कि किसको देना है, लेकिन वो किसी चीज़ का बदला नहीं है, वो बग़ैर हिसाब है, किसी चीज़ का बदला नहीं है। मुझे जो कुछ दुनिया में मिल रहा है किसी चीज़ का बदला नहीं है, आपको जो कुछ दुनिया में मिल रहा है और जो कुछ नहीं मिल रहा है वो किसी चीज़ का बदला नहीं है, बल्कि वो खुदा की उस स्कीम के तहत मिला है जिसमें अल्लाह ताला दे देते हैं बग़ैर किसी तबादले के, बग़ैर किसी हिसाब किताब के दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि फिरौन ने या कारून ने बड़े नेकी के काम किए थे तो अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में इतना पैसा दे दिया था, इस वजह से नहीं था। जो आजमाइश का ज़ाबता है, जिस तरह दुनिया में रात और दिन चढ़ने का मामला है, इसी तरह रिज़्क का मामला भी इस तकवीनी कायनात के सिस्टम का हिस्सा है। तो ये यहाँ पर वाज़े की सूरह आले इमरान में कि तुम रिज़्क को ये ना समझो कि नेकी और बदी की वजह से मिल रहा है, और इस वजह से ना समझो कि तुम रसूल का इनकार कर रहे हो तब भी तुम्हारे पास पैसा है, अबू जहल और अबू लहब को अगर कहा जाए तो ये ना समझो कि अल्लाह ताला तुमसे राज़ी है, नहीं, ये ज़ाबते के मुताबिक जिस तरह सूरज ने चढ़ना है काफिर और मोमिन सबको रोशनी देनी है, इसी तरह से ये रिज़्क का मामला है कि जिसके बारे में लिख रखा गया है किताब मुबीन में, उनको ये रिज़्क मिल कर रहेगा। सूरह अल-हजर में जाकर फरमाया कि हमने ज़मीन में तुम्हारे लिए रिज़्क का इंतज़ाम किया है, और सारे ख़जाने अल्लाह के पास हैं, लेकिन वो जितना चाहिए होता है उतना ही नाजिल करता है, यानी बारिशें जितनी होनी चाहिए, जितने पौधे निकलने चाहिए, जितने फल पैदा होने चाहिए, किस ज़माने में कौन सी फसलें ज़्यादा होनी चाहिए, किस मौसम में कौन से फूल निकलने चाहिए, वो जानता है, उसने पूरा एक निज़ाम बनाया है। तो अल्लाह ताला उतना ही नाजिल करते हैं जितना ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होता है, इसी तरह अफराद को भी उतना ही देता है जितना उनके आज़माने के लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद सूरह अलहज की 58 नंबर आयत है, फरमाया कि वो लोग जो अल्लाह की राह में हिजरत करते हैं फिर वो मारे जाएं या खुद मर जाएं अपनी तबई वफात से रास्ते में हिजरत करते हुए, तो अल्लाह ताला उनको रिज़्क हसन देगा, क्योंकि अल्लाह ताला खैरुर राज़िकीन है। मैंने पहले भी खैरुर राज़िकीन के बारे में बताया कि दुनिया और आखिरत दोनों को इकट्ठा किया है, यहाँ भी ऐसा ही है कि वो हिजरत करने वाले जो मर गए रास्ते में या कत्ल कर दिए गए यानी शहीद हो गए, दोनों सूरतों में अल्लाह का रिज़्क उनको मिलेगा। एक इस सूरत में कि अगर वो जीते हैं, जब तक जीते रहे उस वक्त तक हिजरत के बाद अल्लाह ताला ने उनको रिस्क दिया, दूसरा ये कि शहीद होने के बाद उनको एक ज़िंदगी मिलनी है उसका रिस्क मिलेगा, और इसी का एक हिस्सा क़यामत वाले दिन जब हिसाब किताब होगा तो उसमें जन्नत जो मिलनी है वो भी खैरुर राज़िकीन की तरफ से मिलनी है। उसके बाद सूरह जुम्मा की 11 नंबर आयत है, इसमें फरमाया है कि जब तुम जुमे की नमाज़ के लिए अजान दी जाए तो तजारत छोड़ दो, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक ग्रोह ने क्या किया कि वो आपको तकरीर करते हुए खुतबा देते हुए छोड़कर चले गए, बाहर कोई ताजरों का मेला आया उसमें चले गए, तो फरमाया कि ये जो तुम्हें छोड़ गए खड़ा, हालांकि अल्लाह के पास इस माल तफरी वाला जो माल है इससे ज़्यादा अल्लाह के पास चीज़ें बेहतर हैं, और उस तजारत से भी जो जिसके लिए ये आपको छोड़ कर चले गए, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह ताला रिस्क में बेहतर। अब ये बताया है कि अगर कोई आदमी दीन की खातिर गाहकों को छोड़ देता है, किसी ताजरों को मिलने से छोड़ देता है, बज़ाहिर वो एक नुकसान कर रहा होता है, तो उसको घबराना नहीं चाहिए, کیونکہ اللہ تعالیٰ خیر الرازقین ہے، دنیا میں جو اس کو ملنا ہے وہ ملتا رہے گا، اس میں کمی نہیں ہوگی کہ اس نے جمعہ کی نماز کے لیے دکان بند کر دی، دست گاہک کھڑے تھے، وہ ان گاہکوں کی پرواہ کیے بغیر خدا کے حکم پر چلا گیا، تو یہ خیال نہ کرے کہ گاہکوں کا نقصان ہو گیا، نہیں، واللہ خیر الرازقین، وہ اس کو دیتا رہے گا جتنا اس نے طے کر رکھا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر فرض کر لیجیے دنیا میں اس کا نہیں ملا تو آخرت میں تو بدلہ ملنا ہی ملنا ہے، تو اس میں تسلی ہے، خدا پر توکل کا مضمون ہے کہ رازق وہ ہے، اس پر توکل کرو، اور نیکی کے موقع پر تجارت کے پیچھے نہ پڑے رہا کرو، نیکی کے موقع پر اپنے نقصان کو نہ دیکھا کرو، نیکی کا جب موقع آئے تو نیکی کرنے کھڑے ہو جایا کرو، بس خدا پہ توکل کرو اور حوصلہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر ان کاموں کو ضرور انجام دو جو آخرت سے متعلق ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ان تجارت کے پیچھے تم اللہ کے رسول کو بھی کھڑا کر کے چھوڑ جاؤ اور ان کی بھی توہین کے مرتکب ہو جاؤ اور اللہ کی نافرمانی میں بھی چلے جاؤ۔ تو یہ رزاق کے معنی تھے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو بن پنا وہ عرض کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔